हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22। आज सूत गोस्वामी भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार के विषय में बता रहे हैं। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, नरदेव वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम् नरदेवत् वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम् नरदेवत् वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम् नरदेवत् वमापन्न सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम् नरदेवत् वमापन्न सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रीवीर्याण्यतः परम्। शब्दों का अर्थ, नरदेवत, नर यानी मनुष्य, देवत अर्थात देवत्व, आपन्न स्वरूप ग्रहण करके सुर कार्या चिकीर्षया, सुर कहते हैं देवताओं को, कार्य मतलब कर्म, चिकीर्षया संपन्न करने के लिए समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र यानी हिंद महासागर, निग्रहादीनि अर्थात निग्रह इत्यादि, चक्रे वीर्याणि अतः परम, चक्रे मतलब किया, वीर्याणि अति मानवीय कार्य यानी बहुत ज्यादा पराक्रम वाला कार्य, अतः परम तत्पश्चात। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, 18वें अवतार में भगवान राजा रामचंद्र के रूप में हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और वे इस धरा पर शांति बनाए रखने के लिए तथा देवताओं या शासक लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। कभी कभी प्रगतिशील भौतिक सभ्यता के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक एवं अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष कार्यों के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। उनमें से रावण एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक यानी स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था ताकि लोगों को उस लोक तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया, भगवान श्री कृष्ण की श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा से के फल स्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की। रामायण की विषय वस्तु ही पूर्ण कर्मठता है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से सम्मुनत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की, किंतु वे कहीं भी ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों तथा लोगों को वायु में उड़ाते हैं तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल यानी सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यह ईश्वरीय शक्ति का खेल है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्भरधारु बिम्बफलधरोष्ठा पुरीन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहम न जाने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति ये स्तवी वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वञ्चाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। आज हम भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री रामचंद्र के विषय में पढ़ेंगे। उनके विषय में पढ़ने से पहले उनके परम सेवक हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज रज मुकर सुजान रामा निज मन मुकर सुजान वरनौ रघुवर विमल यश जोधायक भंजा बुद्धिहीन तनु जाने के सिमरो पवन कुमार रे रामा सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरौ कलेश विकार। श्री रामचंद्र की कथा अत्यंत ही मनोहर और समुद्र से भी गहरी है। समझ में नहीं आता कि कहां से श्रवण करें, कहां से शुरू करें, परंतु समुद्र में कहीं से भी भले जल का उपयोग किया जाए समान ही गुण है। इसी प्रकार राम कथा जिधर से लेकर जिधर से श्रवण तक की जाए हृदय में प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। यह त्रेता युग की बात है भक्तों, जब राक्षस इस धरती पर राज करने लगे थे और उनमें से एक रावण जो पुलस्त ऋषि का पौत्र था, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सर्व ही सुर रवनी, यानी दस मस्तक वाला रावण जब चलता था तो धरती कांपने लगती थी। मनुष्य और पशु की तो क्या बात कीजिए, बड़े बड़े देवता भी छुप जाते थे भय से। इस रावण ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किए। इसके राज में बहुत अपराध होने लगे, चोरी जुआ नशा मांसाहार और परस्त्री संग, ये सब लोग ये चार अपराध करने लगे। संतानें अपने माता पिता की बातें नहीं मानती थी, साधु ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगा। ये सब दुर्गति की निशानियां हैं, पृथ्वी अतीत पीड़ित हो गई। भक्तों, पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, वृक्ष हैं, इतने सारे जीव हैं, परंतु इन सब का भार पृथ्वी को कठिन नहीं लगता। परंतु जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो पृथ्वी उस भार को नहीं सहन कर पाती। यह कथा शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। वे कहते हैं, जिनके यह आचरण न भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। हे भवानी, जो ये चार अपराध करते हैं, वो सब जीव जो हैं, जो ये चार अपराध करते हैं, वो निश्चय हैं, उनको मनुष्य नहीं कहला सकते, उनको राक्षस कहा जाता है। जो परस्त्री का संग करते हैं, जो चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, पृथ्वी इनके भार को सहन नहीं कर पाई और अपनी प्रार्थना लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि शिव जी की आशीर्वाद से रावण बहुत शक्तिशाली हो गया है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। हम सब देवताओं को मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तब सारे देवताओं ने सोचा, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। परंतु अभी भगवान विष्णु न जाने कहाँ मिलेंगे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, वहाँ मैं भी था और मैंने सब देवताओं को बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि तो हर जगह है, आप यहाँ पर भी यदि उसे प्रेम से पुकारोगे तो वो उसी समय प्रकट हो जाएंगे। जब हरि हर जगह है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। तब शिव जी आगे कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ने प्रकट भये जग जाना, कि इस संसार में जो भगवान से प्रेम करते हैं, दिखते वे केवल उन्हीं को हैं। भगवान श्री राम के संसार में आने का कारण केवल रावण की हत्या नहीं, परंतु वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर इस संसार में आए। वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार एक पुत्र को अपने माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, किस तरह एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा को शिरोधारी करके राज्य का त्याग करके वनवासी हो जाता है, किस प्रकार एक पति अपने पत्नी की रक्षा करने के लिए इतने सारे असुरों का वध कर देता है। पृथ्वी जब भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे भगवान प्राहिमाम, मैं इस असुर के कष्टों को नहीं सहन कर पाती, आप कृपा कीजिए और इस संसार में अवतार लीजिए और मेरे कष्ट को दूर कीजिए। भगवान ने पृथ्वी देवी और समस्त देवताओं को ये आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द अवतार लूंगा और आप सबके कष्ट को निवारण करूंगा। अब गोस्वामी जी इस कथा को अयोध्या लेकर जा रहे हैं। वहां पर महाराजा दशरथ, जो एक बहुत ही सुंदर राज अयोध्या में राज करते थे, उनके पास सब कुछ था। उनकी तीन पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। परंतु महाराजा दशरथ के पास सब कुछ होते हुए, इतना संपन्न सुखी राज होते हुए, 3 पत्नियां होते हुए भी वो दुखी और चिंतित थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये दिखा रहे हैं इस संसार में, चाहे जीव कितना ही संपन्न हो, परंतु ये संसार दुख की जगह है। इस संसार में दुख होना अनिवार्य है। महाराजा दशरथ इतने बड़े राजा होते हुए, संपन्न राज होते हुए, पत्नियां होते हुए भी दुखी हैं, क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आदर्श दिखता है कि महाराजा दशरथ अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी अपनी पत्नियों के पास नहीं गए, बल्कि कहाँ गए? तो गोस्वामी जी अत्यंत ही सुंदर कहते हैं, गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, गुरु गृह गए तुरंत महीपाला। राजा दशरथ अपनी समस्या को लेकर अपने गुरु महाराज के पास गए हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि संसार का कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, जब समस्या आए तो उसे अपने गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया जानते हैं? चरण लागे करी विनय विशाला, अपने गुरु के चरणों में गिर गए और बड़े ही दीर्घ विनय करने लगे। और निज दुख सुख सब गुरु सुनाई, अपने समस्त दुखों और सुखों के विषय में गुरु को कहा कि मेरे पास सब कुछ है, परंतु हृदय बहुत चिंतित है, क्योंकि पुत्र की अभिलाषा है। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए हमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, परंतु यह यज्ञ मैं नहीं करा सकता। यह यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ हुआ और यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हुए, और उस चरु को राजा ने अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या और केकई को दिया, और कौशल्या और केकई ने अपना अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों को गर्भ हुआ और 9 महीने के बाद अत्यंत ही सुंदर दिवस, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुकल पक्ष अभिजित अरिपीता, शुकल पक्ष अभिजित अरिपीता। नवमी तिथि मधुमास का महीना और अत्यंत ही शुक्ल पक्ष का अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर के 12 बजे सूर्य अपनी तेज को शीतल कर मंद मंद हवा बहने लगी। मध्य दिवस अति शीतल धामा, दोपहर का समय मध्य दिवस, उस समय धूप होती है, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीतल धामा, सूर्य ने अपने तेज को ठंडा कर लिया है। और पावन काल दुख विश्राम, और इतना ही पवित्र काल हो गया, दुख समाप्त हो गए, समस्त जीवों के हृदय में सुख और शांति आनंद की लहरें दौड़ने लगी। सारे देवी देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर अयोध्या के आकाश में आ गए भगवान के स्वागत के लिए। देवता गान करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, इंद्र मृदंग बजाने लगा, गंधर्व रागिनियां गाने लगे, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेम से स्तुति करने लगे। सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के गर्भ से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे ही कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। आइए हम सब भगवान की स्तुति करते हैं। भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुष रुद्रतारी। भगवान प्रकट हुए हैं अद्भुत रूप चार हाथ। माता कौशल्य आश्चर्यचकित हो गई। शरीर घनश्याम वर्ण हाथों में आयुध दोनों हाथ जोड़कर कौशल्य प्रार्थना कर रही है। प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, माया से परे हैं, चारों वेद आपके लिए आपकी ही लीला हैं और आपकी लीलाओं और गुण को आपकी स्तुति को कोई नहीं कर सकता। मैं भला आपकी क्या स्तुति करूं? आप लक्ष्मी देवी के पते हैं, आपसे ही ये संपूर्ण जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड न पाया निर्वत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये भगवान मगर मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए था, आप तो स्वयं आ गए। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना सुरति बहुत विधि कीन कहे। माता कहने लगी मुझे वात्सल्य सुख कैसे मिलेगा? तब भगवान ने माता के पूर्व जन्म का इतिहास बताया कि हे माते आप पूर्व जन्म में मनु और सत्रुपा थे। बहुत कठिन तपस्या से आपने मुझे प्रसन्न किया। जब मैं प्रसन्न होकर आपके सम्मुख आया तो आपने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। मैं तथास्तु कहकर चला गया। फिर अपने गौलोक में जाकर सोचा कि मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन गया हूँ। क्योंकि शास्त्र कहता है एको एव अद्वितीय, यानी भगवान एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो आज मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। उसके बाद कौशल्या कहने लगी गोस्वामी जी के शब्दों में, माता पुनि बोली सोमती डोली, माता पुनि बोली सोमती डोली तजहुतात यह रूप कीजे कछुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता ने कहा परंतु मैं भगवान का क्या करूंगी, मुझे तो अब छोटे से शिशु की भांति चाहिए। क्योंकि माता का सुख वात्सल्य का सुख मैं लेना चाहती हूँ। आपके कृपया छोटे से बालक बन जाइए। सुने वचन सुजाना रोधन ठाना होइ बालक सुरभूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता के प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान छोटे से शिशु की तरह बन गए और रोने लगे। भगवान कौशल्या की प्रार्थना से बालक बन गए। सब प्रजा को पता चल गया। जैसे ही भगवान के रोने की आवाज आई, महाराजा दशरथ को पता चल गया कि संतान की उत्पत्ति हुई है। राजा दशरथ प्रजा और पूरा अयोध्या बालक के दर्शन करके धन्य हो गया। सब कुछ महाराजा दशरथ को बधाई देने लगे। पूरे अवध में आनंद की लहर छा गई। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, अवध में आनंद भर, जय जय श्री राम की। भगवान के आने से अयोध्या में आनंद हो गया, संसार में आनंद हो गया, चारों ओर खुशियां ही खुशियां। उसके पश्चात दूसरी दोनों रानियों को भी कैकेयी के यहाँ पर भरत और सुमित्रा के यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देखते देखते समय बीतता गया और जब 5 वर्ष के ये चारों बालक हुए तो महाराजा दशरथ और तीनों महाराजा दशरथ ने ये निर्णय किया कि अब इनको गुरुकुल में भेजा जाए। और भगवान श्री राम और उनके चारों भाई विशिष्ट मुनिया के यहाँ पर शिक्षा लेने गए। भगवान को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु भगवान इस संसार में आकर अपने आचरण से ये दिखाना चाहते हैं कि जब मैं भी इस संसार में आता हूँ तो मुझे गुरु के पास जाकर शिक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन जाके वेद स्वास सुचारी सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। विशेष मुनि ने कहा, जिसके सांसों से वेद निकलते हैं उस हरि को भला मैं क्या पढ़ाऊंगा। और महाराजा दशरथ के जाने के बाद भगवान को प्रणाम किया और कहा, मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो सब आपका ही प्रभु, आप ही ने मुझे यह सब ज्ञान और बुद्धि दिया है, अब आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आप मुझे आपकी गुरु की भूमिका निभानी है। फिर श्री राम वहीं पर और अपने भाइयों के साथ वहीं पर गुरु की आज्ञा में रहकर शिक्षा अपनी कंप्लीट की और उसके बाद चारों राजकुमार फिर से अयोध्या में शिक्षित होकर आ गए। उसके उपरांत मुझे क्षमा कीजिएगा, आज मेरे पास ना बहुत रश है, बाकी की कथा कल बताऊंगी आपको। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।